ज़िक्र इलाही पेज नंबर है 59। लफ्ज़ ज़िक्र किसको कहते हैं? ज़ाल काफ़रा। ज़करा कहते हैं भूली हुई चीज़ का याद आना, रिमाइंडर के मानों में। पहले पता थी, बस वो जहन से निकल गई, उसको याद करना। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में जब भेजा तो उसके अंदर अपनी मोहब्बत डाल के भेजी। सूरत अल आराफ से ये पता चलता है कि हमारी रूहों से अल्लाह ताला ने अपनी इताअत का और अपनी ज़ात पर ईमान का वादा लिया था। हम दुनिया में आने के बाद उस वादे को भूल चुके होते हैं, तो जिक्र क्या है? अलस्तु बिरब्बिकुम के वादे का याद दिलाना। एक सहाबी ने क्या खूब बात कही कि या रसूलुल्लाह, इन्नली शराइल इस्लाम कद कसरतु अलैही फाहबिरनी बिशैइन अतशब्बत बिही। अल्लाह के रसूल, ये इस्लाम के अरकान मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गए हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं जिस पे अमल करूं। मुझे एक चीज़ बता दें जिसे मैं मजबूती से पकड़ लूं और वो ही करता रहूं। आपने फरमाया, ला यज़ाल लिसानुक रतबम मिन ज़िक्रिल्लाह, तेरी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से हमेशा तर रहे। यानी अल्लाह की याद दिल में बिठा लो और हर वक्त ज़ुबान को अल्लाह की याद से तर रखो। मालूम हुआ कि अल्लाह की मोहब्बत की ये कैफियत अगर दिल में तारी हो जाए तो यही मकसूद है, और फिर यही शॉर्टकट बन जाती है और थोड़े अमल से ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, मंजिल इश्क बसे दूर दराज अस्त वले, तय शवद जादाए सद साला बा आहे गाहे। यानी ये इश्क की मंजिल बहुत दूर की मंजिल है, लेकिन कभी कभी यूं होता है कि 100 साल का रास्ता एक आह में तय हो जाता है। समझ आई? यानी एक आह ऐसे प्यार से दिल से निकलती है कि वो अल्लाह ताला का कुर्ब दे देती है। इसी तरह अबू बकर गजनवी ये शेर पढ़ते थे, मैं महकदे की राह से होकर निकल गया, वरना सफ़र हयात का बेहद तवील था। ये मैं कदे की राह दरअसल मोहब्बत और इश्क का रास्ता है, इसमें थोड़े अमल से ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। यानी बस ये एक शायरी की ज़ुबान है, आप ये कह लीजिए कि अल्लाह ताला की मोहब्बत का नशा ज़िंदगी को आसान कर देता है, वरना ज़िंदगी तवील बहुत है। और हकीकत है कि अल्लाह की मोहब्बत से ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। एक साहिब नबी सल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं पहले ईमान ले आऊँ या जंग लड़ूँ? इन दिनों जंग हो रही थी। आपने फरमाया, पहले इस्लाम कबूल करो, फिर मैदाने जंग में जाना। इसने आपके हाथ पर बैत की और मैदाने जंग में चला गया। इतनी बेजिगरी से लड़ा, यानी बहादुरी से, कि शहादत से सरफराज हुआ। आपने फरमाया कि अमलन कलीलम व अजरन कसीरन, अमल बहुत थोड़ा किया लेकिन अजर बहुत ज़्यादा है। यानी इस शख्स को मौका ही नहीं मिला, इधर मुसलमान हुआ, जिहाद में गया, शहीद हो गया, ना नमाज़ें पढ़ी, ना रोज़े रखे, ना उसकी ज़िंदगी में कोई और नेकी का मौका आया, लेकिन अजर बहुत है। ये जज्बे की बात है कि इंसान चंद घड़ियों में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। एक हदीस में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात को इबादत के लिए खड़े हो जाते, नमाज में कुरान मजीद की तिलावत फरमाते और तिलावत में कुरान बहुत हसीन आवाज़ में ठहर ठहर कर पढ़ा करते। जब रहमत की आयतें आती तो रहमत की दुआ मांगते, जब अल्लाह के गज़ब और अजाब से मुतल्लिक आयतें आती तो अल्लाह के गज़ब और अजाब से पनाह मांगते, और नमाज के दौरान इस कदर गिरिया उजारी करते, यानी रोते, कि दूर दूर तक आपके रोने की आवाज़ जाती, जैसे कि चक्की के चलने या देह के उबलने की आवाज़ आती है। क्या पता चला? अच्छा, कभी हम भी रोए? हम भी रोते हैं, पर कब? जब कोई मर जाता है। सारी ज़िंदगी हम लोगों की हिदायत की तड़प रखने के बावजूद उनके लिए कुछ नहीं करते, लेकिन जब वो दुनिया से चला जाता है तो हम रोते हैं। बाज़ दफ़ा ज़िंदा इंसानों को लोग नहीं पूछते, यूं ही वो मरते हैं लोग मोहब्बत के नजराने पेश करते हैं। तो ख़ुलासा क्या निकला? ज़िक्र इलाही की असल फिर क्या हुई? अल्लाह की याद। चलिए थोड़ा सा इसको मज़ीद समझते हैं। आप देखिए, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, मारूफ ज़िक्र है ना, हर नमाज के बाद भी हम पढ़ते हैं। इसी तरह इसको पढ़ने की एक खास तासीर है। आप कैसे जिक्र करें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आपके दिल के ऊपर ये लफ्ज़ पढ़े सुभान अल्लाह, और आप लफ्ज़ अल्लाह बोले ना अल्लाह, आप देखेंगे अक्सर हल्क तक नीचे तक जाता है, हा, सीने के ऊपर से निकलती है हा, और आप कहते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नहीं अल्लाह अल्लाह। थोड़ा भी करें, शऊर के साथ करें, और ये जिक्र आपको बाकी नेकियों के लिए बांधेगा। आप किसी से कहते हैं आपका ही जिक्र हो रहा था, अच्छा कभी हम कहते हैं मैं आपको याद कर रही थी, उस वक्त बोल नहीं रहे होते, सिर्फ दिल में ख्याल आता है। तो जिक्र और याद एक ही चीज़ है, जिस तरह जुबान से जिक्र होता है ना, इस तरह दिल से भी जिक्र होता है। दिल का जिक्र क्या है कि दिल अल्लाह की तरफ माइल हो और जुबान उसका इकरार करे। आप बिल्कुल इसको ईमान की तारीफ पे ले लें जिस पे शुरू से बात हो रही है, तस्दीकम बिल कल्ब और इकरारम बिल लिसान। जिक्र के भी ये दो पार्टिकल्स हैं, पहले दिल की वेरिफिकेशन चाहिए, आप सुभान अल्लाह कहते तो वाकई आप अल्लाह ताला से इम्प्रेस हो, क्या आपको सुभान अल्लाह कहना पड़ा। आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो वाकई शुक्रगुजारी के जज्बे दिल में आए और आप उसका इजहार जुबान से करें। आप कहते हैं अल्लाह अकबर, पहले अल्लाह की बड़ाई का दिल में यकीन आए फिर जुबान से कहें अल्लाह अकबर। बहुत ज़्यादा दफ़ा नहीं कहना पड़ेगा। अच्छा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, गिनती में खो जाते हैं। गिनती कैसे, कितनी दफ़ा पढ़ना, कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, 500 बार था, अभी गिने नहीं दाने, 1,25,000 पढ़ना था। अमूमी तौर पे आप देखिए कि जब लोग बहुत गिन गिन के नेकियां करते हैं, आपने कभी किसी महफिल को अटेंड किया हो कि लोग कहते हैं आके मिल के आयत करीमा पढ़िए, अब चले गए लोग, वहाँ खजूर की गुटलियाँ, इमली की गुटलियाँ या कोई और बादाम, कोई ऐसी चने चीज़ रखी है कि जिसको लोग मिलके पढ़ेंगे। आप बिल्कुल इसको लॉजिकली देखें, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका, नहीं है कोई इलाह मगर तू ही, अल्लाह की तारीफ है ना। इन्नी, अपने ऊपर हाथ लगाए, इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ज़ालिम हूँ। आयत करीमे की रूह क्या है कि अल्लाह ताला आप तो बहुत अच्छे हैं लेकिन ये जो मुश्किल मुझ पे आई है ना, असल में ये मेरे ही किसी गुनाह की सजा है। एक दफ़ा शऊर से आप आयत करीमा पढ़ें और पसीने पसीने हो जाएं अपने गुनाहों को याद करके, वो आपको उस मुश्किल से निकाल सकता है जिस तरह हज़रत यूनस को मछली के पेट से निकाला। दूसरी सूरत ये, कुछ आप खुद भी पढ़ लेते हैं, कुछ दूसरों को बुलाते हैं। अब आपकी दोस्तें बैठी हैं और पढ़ रही हैं ला इलाहा इल्लल्लाह तस्बाना कन्नी कुंतु मिनह, ला इलाहा इल्लल्लाह तस्बाना, और उंगली पे गिनती है, दाने डालने, कितने पढ़े हैं कितने नहीं पढ़े, ये है वो है, ध्यान उधर है। दूसरी बात देखिए कि जो कलमा कह रही हैं वो क्या, आपकी दोस्त क्या कह रही है, अपने लिए कह रही है ना कि अल्लाह ताला पाक तो आप हैं मैं ज़ालिम हूँ। तो आपकी दोस्त जिस बेचारी ने इतने अहतमाम से लोगों को बुलाया, पढ़ो, खाना खिलाएगी, घर साफ करेगी, उसको क्या मिला। या तो आप ये कह के आए ना कि ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका, ए अल्लाह आप बहुत अच्छे हैं, आप जैसा कोई नहीं है, और ये मेरी दोस्त जालिम है जिसकी वजह से इस पे कोई तकलीफ आई है, तो थोड़ी सी बात समझ भी आती है। तो बगैर सोचे समझे जिक्र की एक मिसाल है, 1,25,000 बार लोग पढ़ते हैं, और अगर 1,25,000 बार पढ़ते हुए हर दफा अपना एक गुना याद करके बंदा शर्मिंदा हो ना, तो 1,25,000 गुनाहों की का कफारा बन सकती है बात। आप उस वक्त तो खाने पीने के फिक्रों में, आप तो घर को देख रहे हैं, बच्चों को मेंटेन कर रहे हैं, और दूसरे आपके लिए पढ़ रहे हैं। आज हमने इसको एक बिल्कुल बाजारी चीज़ समझ लिया, जैसे बाकी चीज़ें खरीद लेते हैं ना, इस तरह हम कहते हैं हम जिक्र भी खरीद लेंगे। जिक्र आपका अपना अल्लाह ताला से ताल्लुक है, ये तो वो मोहब्बत है जो आपके और रब के बीच में एक राज है। तो जिक्र करें ना तो आपका दिल भी मोहब्बत से हो। कभी आपने देखे जिससे मोहब्बत हो ना उसका जिक्र भी हो ना तो चेहरे पे एक रंग आ जाता है। आप जब अल्लाह को पुकारें अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपके लफ्ज़ जो है ना वो आपके जज्बों की गवाही दें, फिर जिक्र होगा। हो सकता है जुबान से कहने का अल्लाह कुछ फायदा दे दे, लेकिन असल बात दिल है। अच्छा, कभी जुबान से नहीं कर सकते जिक्र, तो दिल में अल्लाह को याद करें। हदीस में आता है कि जब मेरा बंदा मुझे दिल में याद करता है, मैं उसको दिल में याद करता हूँ। अब आप सोचिए, अल्लाह दिल में याद करे, जकर तू फी नफसी। और जब बंदा मुझे लोगों की महफिल में याद करता है, तो मैं उसे अच्छी महफिल यानी फरिश्तों की महफिल में याद करता हूँ। फायदे में कौन रहता है? एक शख्स ने कहा कि सुबह उठते क्या करते हो, तो उसने कहा कि मैं फरिश्तों को काम पे लगाता हूँ। कहा, तुम लोग फरिश्तों को काम पे लगाते हो, ये कैसे हो गया? कहता कि मैं सुबह उठते ही इल्म का एक बाब हासिल करता हूँ, इल्म सीखता हूँ, और जूं ही मैं इल्म सीखता हूँ ना, तो मेरा ईमान है कि सब फरिश्ते मेरे लिए बख्शिश की दुआ शुरू कर देते हैं। और क्या करते हो? कहा, मैं मछलियों को काम पे लगाता हूँ, चींटियों को कान पे लगाता हूँ, परिंदों को कैसे? क्या कहा कि मैं इल्म सीखता हूँ तो परिंदे, चींटियाँ, मछलियाँ मेरे लिए बख्शिश की दुआ करती हैं। हम कब सोचते हैं ऐसे? तो अल्लाह से मोहब्बत को लज्जत आशनाई कहते हैं, आशनाई कहते हैं दोस्ती को, फ्रेंडशिप, आशना, लज्जत, मोहब्बत। आइए देखते हैं लज्जत आशनाई क्या होती है। कुरान मजीद हमें जो मंजिल अता करता है वो ये है, वजूह हुई यौम इज़िन नादिरो इला रब्बिहा नाजीरा। इस दिन बहुत से चेहरे तरोताजा होंगे, अपने रब को टुक टुकी बांध कर देख रहे होंगे। सूरत कयामत की आयत 22 और 23 आयत है। टुक टुकी लगा कर देखना क्या है? कि अल्लाह और उनके बीच में कोई रुकावट नहीं होगी। मंजिल यह है कि हम वहां पहुंचे जहां सब का हिसाब हो रहा हो और हमें कहा जाए, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, परवरदिगार रब्बे रहीम की तरफ से तुम पर सलामती हो। यही मंजिल है और इसी के लिए सारी कोशिश करनी है, ताकि जब हलक में जान अटक रही हो तो ये आवाज़ आए, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईन्ना इर्जी इला रब्बी की राधियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए इत्मीनान हासिल करने वाली रूह, अपने परवरदिगार की तरफ लौट आ, यूं कि तू अल्लाह से राजी है और तेरा परवरदिगार तुझसे राजी है। मेरे बंदों में दाखिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। सूरत फजर आयत 27-30 है। इन आयात का मफहूम चंद अशार की सूरत में इन्होंने लिखा है, नफ्स से मुतमईना तू लौट कर इधर आना, मेरे अहले जन्नत में शामिल अपने घर लाना। इर्जी ला रब्बी की रादियतम मर्दिया, यूं सदाए रब आए जान से गुजर जाना। हशर या कयामत हो, कब्र हो के मीजान हो, यार ही के कदमों में हर घड़ी नजर आना। मुनकरों नकीरों को प्यार से थपक देना, पुल सरात आए तो बेधड़क गुजर जाना। हशर का रिहर्सल है, नशर का ये मंजर है, रोज सुबह जी उठना, रोज शब को मर जाना। बात सच है। आप देखिए कि थोड़ा सा इसको समझें, ये जो मौत के वक्त पुकार लगती है ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईन्ना, ये अचानक नहीं लगती, क्योंकि इसमें बात है रा दिया तम मर दिया, माजी के सीगे, या अल्लाह ताला ने एक बात की खबर दे दी, रा दिया, राजी है तू मुझसे, और मर दिया, मैं भी तुझसे राजी हूं। सारी जिंदगी एक बंदा अल्लाह ताला से लज्जत आशनाई को पाता है, फिर अल्लाह ताला को यकीन दिलाता है कि अल्लाह मैं आपके हर फैसले पर राजी हूं, तकदीर की गुत्थियों को सुलझाता है, अच्छे या बुरे मामलात अल्लाह की तरफ डाल देता है, अल्लाह ताला उसको मौत के वक्त ये खुशखबरियां देते हैं। खुद से पूछे, क्या मैं अल्लाह से खुश हूं? मैं अल्लाह से राजी हूं? फिर दूसरा सवाल करें, बिल्कुल अपने आप को आजाद छोड़ें, आप सोचें कि आपको कोई नहीं जानता और आप अपना हिसाब ले रही हैं, कोई एक अननोन शख्सियत आपके सामने है और आप उसके बारे में सोचती हैं कि अल्लाह की नजरों में उसका क्या मुकाम है। कभी खुद से पूछें, कभी अकेले में बैठे रात को, शाम को वॉक करते हुए आसमान की तरफ देखकर पूछें, ए अल्लाह तू ये बता कि तू मुझसे खुश है। ये करके देखें, जिस तरह नमाज में गौर व फिक्र से बेहतरी आई है ना, इससे भी बेहतरी आएगी। आप दिन में एक बार कम से कम जरूर अल्लाह ताला से पूछें, अल्लाह ताला मुझसे खुश है, इसको लाड करना कहते हैं। और अगर आपने ये पूछ लिया सवाल खुद से कब, जिस वक्त कोई नाफरमानी कर रहे हैं, तो आप देखिएगा बेहतरी ज्यादा होगी। जब आपको फील होना कि आप दुनिया की बात मानकर रब को नाराज कर रहे हैं, चुपके से कमरे में जाएं, शीशे के आगे खड़े होके कि अल्लाह ताला आपको मेरे पर गुस्सा आ रहा है ना, अल्लाह ताला आपको मैं अच्छी तो नहीं लग रही ना इस वक्त, अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं अपने आप को बदलूं। अल्लाह से बातें करना आ गया, आप देखेंगे आपकी जिंदगी खूबसूरत हो गई, स्वीट मेमोरीज। दीन का रास्ता खुश्क नहीं, बल्कि इसमें बहुत प्यार मोहब्बत है। अल्लामा इकबाल पूरे दीनी अमल और इबादात को लज्जत आशनाई का नाम देते हैं। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। इसमें दीन सीखने और सिखाने का एक तरबियती निज़ाम भी है। हमने बुजुर्गों की महफिलें ऐसी भी देखी हैं कि इनमें फैजाने सोहबत की खास कैफियत होती है। सत साला दौरे चिराग था सागर का एक दौर, निकले जो मैं कदे से तो दुनिया बदल गई। सहाबे किराम जब नबी सल्लम की मजलिस में बैठे होते थे तो कहते थे, हम जन्नत दोजख और मरने के बाद के मनाजर को अपनी आंखों से देख रहे होते थे। यानी ये जो इल्म की महफिलें हैं ना, ये अल्लाह से मोहब्बत के रास्ते आसान कर देती हैं। यहाँ बैठकर वक्त का एहसास होता है। अगर रात नींद ठीक पूरी की हो तो शर्त ये है, अदरवाइज आप देखें कि मेरे हाल सारे दिन का सबसे बेहतरीन वक्त हमारा ये नहीं होता जब हम बैठ के सीखते हैं और सिखाते हैं। बीमारी, दुख, परेशानी, तकलीफ से भाग। आप कहते हैं, नहीं मुझे तो नींद आ रही है, इसलिए कि तवज्जो गई, लेट बैठे, कुछ और सोचने लगे। जब हम बगैर किसी शिर्क के अल्लाह के दीन को सीखने बैठते हैं ना, इससे खूबसूरत कोई लज्जत आशनाई नहीं। फिर आप देखिए इबादत, लोग कहते हैं ये नमाज का वक्त है, और अल्लाह से मोहब्बत वाला कहता है, नहीं ये मेरी अल्लाह से मुलाकात का वक्त है। हजरत अली के बारे में गालिबन आता है, या उनकी तो बात पीछे सुनाई थी आपको, एक सहाबी थे तो उनके तीर लग गया और तीर हड्डी में चला गया। अब जब निकालना चाहते हैं तो दर्द होता है। इतने में नमाज का वक्त हो गया, कहने लगे, जब मैं नमाज में होता हूं ना तो मुझे इर्द गिर्द की होश नहीं होती, उस वक्त कोशिश करना इसको निकालने की। कहा ठीक है, नमाज पढ़ के सलाम फेरी, कहा क्या हुआ, मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने तीर नहीं निकाला। कहने लगे कि क्या बात करते हैं, हमने तो पहली रकत के रुकू में ही निकाल लिया था। ये है दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। अच्छा, आप अगर इस लज्जत को पाए ना तो आप परेशान नहीं रहेंगे कभी। दिन में 5 बार आप अल्लाह से जाकर दुख सुख ही तो करते हैं, अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सुझा क्या करूं, ये मामला पड़ गया, इसका क्या हल है। कभी आपके फैसले गलत नहीं होंगे, आपको इतना यकीन होगा क्योंकि मैंने अल्लाह से पूछ लिया था। अब देखिए, हर वक्त की जो मांगने वाली हिदायत है उसमें ये भी तो है ना कि इस वक्त क्या रिएक्ट करूं। मैंने तो कुछ लोगों को कहा कि मैं तो ये तक अल्लाह से पूछती हूं कि आज क्या पकाऊं, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह बता आज क्या पकाऊं। बस जब ऐसा होता है, आपको हल्की सी चीज पकाते हैं, फिर मेहमान आ जाते हैं, आप कहते हैं हाय गोश्त पका लिया होता, चलो मेहमानों के लिए दोबारा ना बनाना पड़ता। कभी आप बहुत सोच के अच्छा खाना बनाते हैं, पता चलता है आज मियाँ साहब बाहर से खाए, आपको गुस्सा आता है, तो पूछ लिया करें अल्लाह से पहले ही, आज क्या पकाऊं, आज क्या चीज करने का दिल है, आज का क्या दिन है, आज क्या पहनूं। आप घर से निकले, बहुत मोटे कपड़े पहने, बाहर आए पता चला गर्मी हो गई, पसीने आए, बेचैन हो गए, तो आप सुबह अल्लाह से कहा करें, अल्लाह ताला आज मैं क्या पहनूं, आप मुझे बताएं। यकीन करें ये 24 घंटे का ताल्लुक बनेगा। करवटों में खियाम वकूदम वाला जुनूबिहिम, खड़े बैठे लेटे करवटों पे भी रब को याद करते हैं। तो मेरा आपका अल्लाह से जब ताल्लुक बना, उसके बाद हमें दूसरी चीजों की परवाह न रही। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो कहते हैं, अगर हमें जन्नत और दोजख अपनी आंखों से भी नजर आ जाए तो हमारे ईमान में कोई इजाफा ना होता, गोया के पहले देख चुके हैं, इतना यकीन है। इसी तरह गालिबन इन्हीं का कौल है कि अगर अल्लाह ताला अपने वजूद के साथ मेरे सामने आ जाए तो मेरे ईमान में कोई इजाफा ना हो, क्योंकि पहले ही इतना है। और जब ये मोहब्बत होती है तो फिर कुर्बानियाँ देना आसान लगता है, फिर फजर लेट नहीं हो सकती, फिर दुनिया के कामों को निपटाते निपटाते आधी रात हो जाए और ईशा के बगैर सो जाए, या वो पढ़ें भी ऐसी कि जिसको पढ़ के खौफ आए कि ये मेरे मुंह पे मारी जाएगी, तो ये मोहब्बत की कमी है। दीन की बुनियाद तौहीद है, जो तमाम इबादात की रूह है, और तौहीद की असल रूह इखलास है। इखलास के मानी खालिस कर लेने के, यानी अपने आप को अल्लाह के लिए खालिस कर लेना। फरमाया फाबुदिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, अल्लाह की इबादत करो पूरी ज़िंदगी को अल्लाह के लिए खालिस बनाते हुए। अब आप देखिए, पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत कैसे की जा सकती है, ये क्या रास्ता है, कैसे होगा, इसके लिए अपने अंदर इखलास लें। जैसे आप मिसाल है कि इबादत करते वक्त खालिस दिल से करते हैं ना, तो आप देखिएगा जब आप खाना पकाएंगे ना, आप उस वक्त भी खालिस दिल से पकाएंगे। पूरी ज़िंदगी का खुलासा बन जाती है वो चीज़ जब एक बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है। और आप देखेंगे कि जब हम पढ़ के रहे हैं टॉपिक इबादात का पढ़े हैं ना, और इस पूरे टॉपिक में पढ़ते हुए आपको कहीं फिक्ही मसाइल से वास्ता पड़ा, ऊंचा सजदा नीचा सजदा, फ़र्ज सुन्नत नफिल, औरत और मर्द की नमाज का फ़र्क, आज हमने किस चीज़ में अपनी इबादात को उलझा दिया, मसलक की जंग में, फिक्की बातों में। सच बताएं, आप जब से यहाँ पढ़ने आए हैं 5 साल 6 साल हो गए हैं, कितना को वक्त फिक पे लगता है? फिक के नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं आप यहाँ पढ़ते। हदीस में तफहीम सुन्ना पढ़ लेते हैं, जिसमें हदीसों की रोशनी में अमल है, नमाज रोज़ा हज जक़ात तहारत ये कुछ पढ़ते हैं ना। लेकिन आप बाहर जाके लोगों से पूछें, वो कहेंगे अब आना जाइएगा, उनका अकीदा ख़राब है, उनकी फिक और है। अल्लाह से मोहब्बत फिक है हमारी। पहले आप अल्लाह की मोहब्बत तो पैदा करें। नमाज पढ़नी क्यों है, किसके सामने खड़ी हूँ? आप तो इन बहसों में पड़े हुए हैं कि औरत की नमाज है कि मर्द की है, ऊंचा सजदा है, वो तो सुन्नत में पढ़ लेंगे जैसे अल्लाह के नबी ने कहा, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो ये देख रहे हैं कि नमाज में पढ़ना क्या है। आज रूह पे बात नहीं होती, नमाज क्यों पढ़ो, अल्लाह से क्यों मांगो, अल्लाह के साथ या का नाबुदू व या का नस्तईन का ताल्लुक है, इस पे बात नहीं करते। और जहां दीन की बात आएगी, मसलकों के नाम पे मस्जिदें बांट लेंगे, फिक के नाम पे अपनी मस्जिद की सोच बचाने के लिए दीन को खराब करने पे लोग तैयार हैं। चूंकि हम ये कहलाते हैं तो हमें इसी मसले को सपोर्ट करना। भाई मेरा आपका इससे क्या ताल्लुक है? हम तो औरतें हैं, घरेलू औरतें, हमें तो बच्चे पालने हैं, हमें तो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत करना है। दीन वाले इल्म वाले झगड़ते रहे, वो करें इल्मी वैसे करें, हक है। मैं नहीं कहती कि नहीं होनी चाहिए या इसकी असल नहीं है और सारे ही ठीक हैं, ये भी गलत है। लेकिन मुझे आपको तो इसकी अभी फिक्र है कि हमें तो अभी अल्लाह से वो मोहब्बत ही नहीं हुई जो फजर पे उठा दे, अभी अल्लाह से वो मोहब्बत नहीं कि जो ईशा की नमाज पढ़ के सुलाए। तो आप किस तरीके की बात, आप पूरी सुन्नत के मुताबिक भी नमाज पढ़ लें, सल्लु कमा राई तुमोनी उसल्ली, आपने फरमाया वैसे नमाज पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा, आप पूरी वैसे ही पढ़ें, इंचों से नाप के सुन्नतों को माने। लेकिन अगर आपका दिल नमाज में हाजिर नहीं है तो फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, खराबी है, तबाही है उन नमाजियों के लिए, ये नहीं कहा बेनमाजियों के लिए, नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों में गफलत बरतते हैं। तो नमाज में अल्लाह की तरफ तवज्जो ना जाना ये गफलत नहीं है, और जो नमाज नहीं पढ़ते ये भी गफलत है, और जो मन माने तरीकों से पढ़ते हैं ये भी गफलत है। तो लिहाजा अल्लाह के नाम पर ज़िंदगी को खालिस करना। मैं ये सोचती हूँ कि ज़िंदगी काफ़ी तो गुजर गई ना हम सब की, ये तो अब अल्लाह को पता आगे कितनी है, आधी तो गुजर ही गई ना, आगे क्या है, इसको अच्छा बना ले। लोग हमेशा कहते हैं हाय शुरू से किसी आलिम घर में पैदा होते ना, मेरे अब्बू जी जो वो आलिम दीन होते तो कितना मजा आता, और अगर मेरी अम्मी हाफिजा होती तो फिर तो मैं भी हाफिजा बन जाती। वल्लाह ही ऐसा नहीं होता, अच्छे अच्छों की बिगड़ी हुई औलादें देखी हैं आपने भी। आप ये कहें कि आज नाउ और नेवर, आज तक नहीं ले सकी, यानी आप आज की डेट देखें 21 अप्रैल 2016 ना, इस वक्त 12:24 आपकी घड़ी दिखा रही है, आज की डेट लिखे, आज इस वक्त तक जो नहीं कर सकी थी अब कर लेते हैं। अभी जिंदा हूं, बेहतरी की उम्मीद है, इस्लाह की उम्मीद है। और आपको तक कि खुद को बदलना ये मुमकिन ही कब होता है, जब आप यकीन रखते हैं कि मैंने खुद को बदलना है। आजकल आते जाते घर के रास्ते में एक कब्रिस्तान से गुजर के आते हैं ना हम लोग, आपको पता है ये हैब्रोतिन पे कब्रिस्तान है, उधर से हम गुजरते हैं जब घर जाए। तो मैं जब उधर से गुजरती तो मेरे लाशौर में एक सोच होती है, इनके पास अमल का वक्त ख़त्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास है। और मैं चुपके चुपके अल्लाह से ये कहकर आती हूँ कि अल्लाह ताला इसके अंदर जाने से पहले मुझसे कुछ करा ले, मुझे ज़ाया ना कर। मुझे लगता है कि ये एक अल्लाह का प्लान था कि रास्ते में कब्रिस्तान आ गया। रियली मैं रोज़ वहाँ से कुछ फैसले करके गुजरती हूँ, मैंने डिले नहीं करना, मैंने पोस्टपोन नहीं करना नेकियों को। आज जो नेकी मैं कर सकती हूँ मैंने इसको आज ही करना है। क्यों? मुझे नहीं पता कल मेरा बुलावा है। कभी अपने कब्रिस्तान वालों को फ़ोन किया? कभी कब्रों में SMS किए? कभी आपने कब्र वालों को व्हाट्सएप मैसेज किए, उनकी फेसबुक पे प्रोफाइल्स देखी? कभी आपने उनको दावत दी कि आइए इधर इस्लाम की चार बुनियादें किताब हो रही है आप भी पढ़िए? कभी किया किसी ने? क्यों? अब बस है, वो अमल की हद से गुजर गए। जो लोग आज जिंदा हैं और अपना वक्त जाया कर रहे हैं और जो उनको चाहिए वो नहीं ले रहे, तो उनमें और कब्र में पड़ों में कोई बहुत फर्क नहीं है। चलते फिरते लाशें आज आज आप देखिए, बाजार आबाद हैं, मेले ठेले देख लीजिए, ग्रोसरी स्टोर्स आबाद हैं, आपको एयरपोर्ट्स पे भी रश दिखेगा, वीरान है तो मस्जिदें वीरान हैं। और मस्जिद तो फिर हफ्ते में एक दिन तो भरी जाती होगी, आज इल्म के नाम पे किधर है, दीन किधर है? और कितने मुतमईन है, मैं अक्सर खुद को कहती हूँ कि शायद मैं ही ज़्यादा सोचती हूँ, शायद मैं एक्स्ट्रा सोचती हूँ, सब खुश ही होंगे। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अभी तो इतना काम बाकी है, और स्पेशली वो लोग जो हम वेस्ट में बैठे हुए हैं, हमारे पास तो हीप्स एंड हीप्स ऑफ वर्क मौजूद है पीछे, और असबाब कितने ज्यादा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कितना कुछ है। लेकिन हम क्यों बैठे? नहीं, 6 माह सिर्फ रह गए हैं बच्चे की शादी को, अब मुझे छुट्टी चाहिए। आज के बाद जरा मैं बहुत काम कर चुकी दीन के नाम का, मुझे 1 साल की छुट्टी चाहिए। आपको पता है कि आपको 1 साल आपके पास है भी कि नहीं है? आप देखिए कि एक पाकिस्तान का ट्रिप लगता है ना हमारा, जस्ट रेगुलर ट्रिप, तो उसके बाद 2-3 महीने तक हम अपनी रूटीन में नहीं आते। बल्कि मैं तो खौफ से कहती हूँ कि बाज लोग उमरे पे जाते हैं तो मैं डर जाती हूँ कि पता नहीं अब आके कुरान क्लास में आएंगे कि नहीं, वो उमरा इतना महंगा पड़ता है उनको, रूटीन टूट जाती है। तो अगर आज मेरी आपकी आदत बनी हुई है ना, तो आप इसको गनीमत जाने, अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह ने मुझे आपको ये शऊर दे दिया। कितने लोग हैं इस काम को बेकार काम कहेंगे, फालतू काम तो ज़रूर ही कहेंगे, बेकार ना भी कहेंगे ना, कहेंगे ये एक्स्ट्रा काम है, नमाज तो पढ़ ली अब और क्या करें। लोग कहते हैं नमाज हम पढ़ते, रोज़े हम रखते, ज़कात हम देते, मस्जिदों को चंदा हम देते, अब आप हमसे और क्या चाहते हैं? भाई हम ये चाहते हैं कि आपकी पूरी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक बन जाए, आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक आ जाए। और आप देखेंगे कि जिस दिन ये समझ आ गई बात, उस दिन फिर हमें कोई रोक नहीं सकता। असल जो चीज़ मुझे समझ आई है ना, हमने कोई ऐसी मिसाल देखी नहीं है, हमारे पास कोई रोल मॉडल नहीं है। चूंकि बड़ों ने नमाज रोज़े की बात की थी, हम नमाज रोज़ा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से देख लीजिए, कभी कोई नमाज के नाम पे चिढ़ता नहीं है, यानी जो नहीं पढ़ते उनको भी गिल्ट है कि हमें पढ़नी चाहिए। लेकिन आप ज़रा कोई दीन की बात, अल्लाह के लिए कुछ करने की बात करें तो लोग कहेंगे घर संभालो, बच्चे देखो, मियाँ को नाराज़ ना करो, ये ना करो। लोगों को लगता है ये चंद कुछ लोग हैं शहर में जिनको ये एक्स्ट्रा काम मिल गया, हम तो मसरूफ़ हैं, मैं तो बच्चों वाली हूँ, मैं मेरे तो शौहर गर्म रोटी खाते हैं, यानी ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि नहीं? मतलब यह कि बस हम दुनिया में आप ही सबसे बेकार हैं, आप करिए, आपको अल्लाह मुबारक करे। हाँ वैसे मैं दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, भी दुआ तो यही की जा सकती है कि अल्लाह आपका दिल दीन के ऊपर जोड़ दे, आपको अपनी ज़िंदगी की जो कीमत है उसका पता चल जाए। पिछले से पिछले साल रमज़ान से पहले एक लेक्चर दिया था, अभी भी कहीं ना कहीं नेट पे होगा, कि अगर आपको ये पता चल जाए कि ये साल मेरा आखिरी रमज़ान है, तो आप इसको कैसे गुजारेंगे। किसी की मैंने कोटेशन दी थी, उसमें तौफीक चौधरी का नाम सुना होगा, इंग्लिश स्पीकर है, तो मैंने उनकी ज़ुबान से ये वाक़या सुना था। डॉक्टर भी हैं बाय प्रोफेशन। तो कहते हैं कि मेरा एक मरीज़ था जो आप कह सकते हैं कि जानलेवा बीमारी का शिकार था, तो उसने एक ख़त लिखा था इनको। वो ख़त पढ़ के सुनाया था, बहुत दिलसोज था, यानी जिसका खुलासा क्या था कि अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ। मुझे सारी जिंदगी वो हकीकत नहीं समझ आई जो मुझे अब समझ आ रही है, बताओ मैं क्या करूं। मेरे पास थोड़ा वक्त है, तुम बताओ कि मैं इस थोड़े से दिनों को कैसे इस्तेमाल करूं कि मेरी सारी जिंदगी की कमी बेशी का कफारा हो जाए। तो वो तो खुशकिस्मत था जिसको डॉक्टर्स ने कह दिया कि तुम 2 माह जियोगे, मुझे आपको तो नहीं कहा। हमें इस पे अपनी जिंदगी को खुद लाना है। और ये बात दूसरा आपको बता तो सकता है, लेकिन आप कुछ जमा नहीं सकता इस पे जब तक आपको खुद यकीन ना हो। एक शख्स ने कहा कि मैंने जिंदगी का खुलासा बर्फ बेचने वाले से लिया, जो आवाज लगा रहा था कि लोगों मेरी बर्फ खरीद लो। उस शख्स का सरमाया घुल रहा है, तुम नहीं लोगे तो शाम तक बर्फ पिघल जाएगी। उसने कहा यही तो हमारी जिंदगी है, अगर हम इससे कुछ फायदा नहीं लेंगे वक्त तो गुजर ही जाएगा। देखिए ना ये घड़ी, अगर हम इस वक्त ये काम ना कर रहे होते तो चलती रहती कि रुक जाती? चलती रहती ना। और ये उस वक्त भी चल रही होती है जब हम ऐसे ही बेकार वक्त जाया करते हैं। 10-15 मिनट एक टेलीफोन कॉल पे लगना कोई बड़ी बात नहीं है, घड़ी तो उस वक्त भी चलती है। सिर्फ डिसाइड करने के अंदर हम आधा पौना घंटा लगा देते हैं, कुछ भी माइंड सेट करने में 1 घंटा लगता है। आप अपने 24 घंटे का ब्रेक डाउन करके देखिए, आपका दिल बंद होने लगेगा। इतना वक्त जाया करती हूँ मैं, इतना वक्त जाया करती हूँ। किए हुए काम को दोहराते हैं, जो काम आधे घंटे में हो सकता है ना, हम उसको कम से कम 2 घंटे में करते हैं। कोई बात आप लोग शेयर करें। अगर हमें पता लग जाए कि अगर हमारी जिंदगी के ये आखिरी दिन है, तो कैसे यूज करेंगे। किसी ने कहा कि मैं वैसे ही करूंगा जैसे कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एक सेकंड भी ऐसा नहीं है कि जो मैं वेस्ट करूं, तो मैं तो ऐसे ही करूंगा। खुशकिस्मत है वो लोग, पहले से बोरिया बिस्तर बांध के बैठे हुए हैं, जब कॉल आई चल पड़ेंगे। तो यार अल्लाह ताला जाना तो है ही है। मैं ये सोचती हूँ अक्सर कि जब हमारी मौत का वक्त आएगा तो हमें हाथ पांव कितने पड़ेंगे। बाज़ दफ़ा लोग लास्ट मोमेंट पे काम करने के आदी होते हैं ना, हज पे जाते हैं उससे पहले परेशान है, उसका देना उसका लेना, ये करना, बिल जमा कराने, बच्चों का अरेंज करना, वो करना। तो वो आखिरी 2-4 दिन जो एक स्पिरिचुअलिटी के हो सकते थे कि कहाँ जा रही हूँ, किसने बुलाया है, वो हमारी खपाइयों में गुजर जाते हैं। इसी तरह शादी खुशी का मौका होती है, जो बहुत इंतज़ार के बाद आता है, अपनी शादी हो या बच्चों की हो, तो अक्सर देखिए लोग उसमें परेशानियों में गुजार देते हैं वक्त, बाद में कहते हैं पता ही नहीं चला शादी गुजर गई। इसी तरह आप सोचिए, जिस दिन मेरी मौत आएगी, मैं मुतमईन होंगी या हाथ पांव पड़े होंगे। ये भी करना, वो भी देना, उसका लेना, उसको बताना, ये है, ये सारे काम तो मेरे दिमाग पे पड़े हुए थे, दूसरों को तो मैंने बताया ही नहीं। या फिर मुतमईन है कि या अय्यतुह नफ्सुल मुतमईना, सुकून है, आ जाए मौत, आई एम रेडी, आई एम वेल प्रिपेयर्ड। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला फरिश्ते को जब मर्जी भेजें, बस उसे कहें कि मेरी जान आसानी से निकाले, सुकून से निकाले। अगली बात पढ़ते हैं, फिर आपको थोड़ी सी बात समझ आएगी।